ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी कोई ऐसी कल्ट क्लासिक फिल्म जरूर देखी होगी जहां दर्शक मेन कैरेक्टर के एकदम दीवाने हो जाते हैं।
अरे हाँ बिल्कुल, वो लोग उसके डायलॉग्स रट लेते हैं, उसके चलने का अंदाज कॉपी करते हैं।
हाँ, और उसे अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल मान बैठते हैं। लेकिन फिर सालों बाद उस फिल्म का डायरेक्टर किसी इंटरव्यू में आता है और एक ऐसा बम फोड़ता है कि सबके होश उड़ जाते हैं।
और वो कहता है कि ये कोई हीरो नहीं था, है ना?
एकदम सही, वो कहता है कि अरे नहीं, वो कोई हीरो नहीं था, मैंने तो उस किरदार को एक चेतावनी के रूप में गढ़ा था कि इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए। मतलब दर्शक इतने सालों तक पूरी तरह से गलतफहमी में जी रहे थे।
ये बहुत ही दिलचस्प स्थिति है, क्योंकि जब हम किसी कहानी में गोता लगाते हैं ना, तो हमारा दिमाग खुद बखुद ये मान लेता है कि जो कहानी के बीचों बीच खड़ा है वही हमारा मसीहा है।
हम ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाते।
बिल्कुल, हम ये सोचते ही नहीं कि शायद लेखक ने उसे समाधान के तौर पर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर हमारे सामने पेश किया हो।
और आज हम इसी धोखे को, इसी गलतफहमी को बेनकाब करने वाले हैं। आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो डॉक्टर जॉन वॉल्टन का एक बेहद गहरा अध्ययन है, उनका सेशन 24।
हाँ, जो कि बुक ऑफ जॉब में जॉब की भूमिका पर आधारित है।
जी, और ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानियों में से एक है। पीढ़ियों से लोगों को यही लगता आया है कि जॉब, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, वो दुख और तकलीफें झेलने का कोई परम आदर्श है।
मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी तरह हमें भी चुपचाप सब कुछ सहना चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का दावा है कि जॉब कोई हीरो नहीं है, वो तो बस एक चेतावनी है।
अगर हम डॉक्टर वॉल्टन के नजरिए से देखें तो ये अध्ययन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के हमारे पूरे तरीके को ही पलट कर रख देता है।
हाँ, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि जिसके नाम पर किताब का शीर्षक है वही उस किताब का मॉरल कंपस होगा।
एकदम सही, लेकिन ये रिसर्च हमें बताती है कि हमें उस किरदार के चश्मे से दुनिया को देखने के बजाय उसके किरदार की कमियों को दूर से खड़ा होकर देखना चाहिए।
तो चलिए इसी खुलासे से शुरू करते हैं। अगर जॉब हमारा रोल मॉडल नहीं है तो फिर वो है क्या? क्योंकि मैंने जब डॉक्टर वॉल्टन का विश्लेषण पढ़ा तो सबसे पहली बात जो मुझे चौंका गई वो ये थी कि दुख के समय में जॉब जो भी प्रतिक्रिया दे रहा है वो पूरी तरह से गलत है।
हाँ, और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कहानी में जॉब का काम किसी आदर्श व्यवहार को दिखाना नहीं है।
तो फिर उसका काम क्या है?
उसका काम उस इंसान का प्रतिनिधित्व करना है जिसकी सोच दुख आने पर पूरी तरह से पटरी से उतर जाती है। जब जॉब पर विपत्तियों का पहाड़ टूटता है तो उसका मानना होता है कि ईश्वर अन्यायपूर्ण हो गया है।
अरे बाप रे!
हाँ, वो सोचता है कि अब इस समस्या का एक ही हल है, ईश्वर को अदालत के कटघरे में खड़ा करना और आमने सामने बहस करना। डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि जॉब का ये सोचना कि वो ईश्वर से जिरह करके न्याय पालेगा पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाला विचार है।
लेकिन एक मिनट, यहां एक बात समझ नहीं आती। अगर जॉब ही मुख्य पात्र है और उसे इतनी भयानक पीड़ा से गुजरना पड़ा है तो जो भी इंसान इस कहानी को पढ़ेगा वो तो स्वाभाविक रूप से जॉब से सहानुभूति रखेगा ना?
हाँ, वो तो है।
मतलब अगर आप बहुत गहरे दुख में हैं तो आप जॉब के अंदर खुद को देखेंगे, तो फिर हम कहानी के नायक पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? क्या उसकी पीड़ा उसके नजरिए को सही नहीं ठहराती?
आपकी ये उलझन बहुत वाजिब है। सहानुभूति होना एक बात है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि हमें जॉब को एक अपर्याप्त ज्ञान वाले इंसान के रूप में देखना चाहिए।
अपर्याप्त ज्ञान?
हाँ, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका ज्ञान आधा अधूरा है। ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि वो बार बार गलतियां कर रहा है, दरअसल उसका गलत होना ही इस किताब का मुख्य विषय है।
अच्छा, तो वो सही उदाहरण है ही नहीं?
बिल्कुल नहीं। कहानी के अंत में अगर आप ध्यान दें तो जॉब की तारीफ इस बात के लिए नहीं की जाती कि उसने बहुत अच्छी तरह से दुख झेला।
तो फिर उसकी तारीफ किस बात के लिए होती है? कहानी के आखिर में उसे सब कुछ वापस तो मिल ही जाता है ना?
उसकी तारीफ अंततः अपनी बात से पीछे हटने, अपनी गलती मान लेने के लिए होती है, और ये स्वीकार करने के लिए होती है कि उसे ईश्वर के काम करने का तरीका समझ ही नहीं आया था।
ओह, मतलब वो मान लेता है कि वो गलत था।
हाँ, वो पूरी प्रक्रिया के दौरान एकदम गलत दिशा में भाग रहा था। ये कहानी ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि जब जिंदगी में सब कुछ तबाह हो जाए तो एक अच्छा इंसान भी कैसे गलत निष्कर्ष निकाल सकता है।
मतलब हमें ये सीखना है कि दुख के समय में क्या नहीं सोचना चाहिए।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। मतलब अगर जॉब की सोच गलत थी और उसका नजरिया भी गलत था तो फिर एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है।
कौन सा सवाल?
उसकी सबसे बड़ी खूबी तो उसकी धार्मिकता और अच्छाई मानी जाती है ना, अगर वो अंदर से इतना ही उलझा हुआ था तो उसकी वो महान धार्मिकता क्या थी? क्या वो भी बस एक दिखावा थी? डॉक्टर वॉल्टन इस पर क्या कहते हैं?
डॉक्टर वॉल्टन इसे बहुत ही बारीकी से समझाते हैं कहानी के एक हिस्से में, जहां जॉब अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कस्में खा रहा होता है।
हाँ, अध्याय 31 में।
जी, अध्याय 31 में वो अपनी धार्मिकता की एक लंबी लिस्ट देता है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन स्पष्ट करते हैं कि ये कोई पूरी तरह से बेदाग या परफेक्ट होने वाली स्थिति नहीं है, जैसा कि भजन संहिता या साम्स में कहा गया है। डर है, लेकिन प्राचीन धर्म ग्रंथों में ये बहुत साफ तौर पर माना गया है कि ईश्वर के सामने कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हो सकता।
तो फिर?
तो जॉब की धार्मिकता उसे समाज में अलग जरूर खड़ा करती है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो कितना अच्छा इंसान है। पुस्तक का मुख्य प्रश्न कुछ और है।
तो असली सवाल क्या है?
असली सवाल ये है कि क्या वो अपनी धार्मिकता का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे इसके बदले में ईश्वर से कुछ फायदे मिलते हैं?
फायदे जैसे कि धन, दौलत और परिवार?
हाँ बिल्कुल। या फिर उसकी धार्मिकता का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य है, चाहे उसे कुछ मिले या ना मिले।
इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक उदाहरण देना चाहूंगा। ये वैसा ही है जैसे ये पता लगाना कि कोई छात्र केवल अच्छे ग्रेड्स यानी फायदे पाने के लिए रात दिन पढ़ाई कर रहा है, या इसलिए क्योंकि उसे उस विषय से सच में प्यार है।
अरे वाह, ये एकदम सटीक तुलना है। और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि स्रोत ये स्पष्ट करता है कि पाठ खुद ये नहीं बताता कि जॉब की असली प्रेरणा क्या है।
तो क्या हमें कभी पता ही नहीं चलता कि वो सच में धार्मिक क्यों था?
नहीं, डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि किताब का मुख्य लक्ष्य बस ये साबित करना है कि कम से कम फायदे उसकी प्रेरणा नहीं है। जब वो अपने दोस्तों के सामने खुद का बचाव कर रहा होता है ना।
हाँ, तब वो क्या कहता है?
वो बस खुद को उन अपराधों से निर्दोष साबित करना चाहता है जिनके कारण शायद उसका ये पतन हुआ। वो बस ये साबित करना चाहता है कि उसकी अच्छाई उन छिन चुके फायदों से नहीं जुड़ी थी।
अगर फायदे उसकी प्रेरणा नहीं है तो क्या इसके पीछे कोई गहरा डर छिपा हो सकता है? मतलब कोई छिपा हुआ डर उसे धार्मिक अनुष्ठान करने पर मजबूर करता है?
हाँ बिल्कुल हो सकता है।
और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहीं से डॉक्टर वॉल्टन वो महान सहजीवन वाले विचार को सामने लाते हैं। ये क्या है?
महान सहजीवन, जिसे हम ग्रेट सिम्बायोसिस भी कहते हैं, ये प्राचीन दुनिया की मानसिकता को समझने की चाबी है। उस जमाने में कर्मकांड या पाइटी का अर्थ देवताओं के कमजोर अहंकार को संतुष्ट करना था।
देवताओं का कमजोर अहंकार?
हाँ, मतलब उन्हें खुश रखना, उनकी चापलूसी करना। प्राचीन समाजों में जीवन बहुत अनिश्चित था, तो लोग मानते थे कि देवता तुनक मिजाज होते हैं, तो ये एक लेन देन की व्यवस्था थी। आप देवताओं को भोग चगाएं, बदले में वो आपको सुरक्षा देंगे।
तो ये तो एक तरह से प्रोटेक्शन रैकेट जैसा हो गया। तुम मुझे खुश रखो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अब मुझे कहानी का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां जोब अध्याय 1 में लगातार अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता रहता है।
एकदम सही, वो बलि चढ़ाता है सिर्फ इस डर से कि शायद उन्होंने अनजाने में कोई पाप कर दिया हो।
लेकिन एक मिनट, यहां मैं थोड़ा पुशबैक दूंगा। क्या अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एहतियातन बलि चढ़ाना सिर्फ एक अच्छे और सतर्क पिता होने की निशानी नहीं है? डॉक्टर वॉल्टन इसे जॉब की कमजोरी या डर के रूप में क्यों देख रहे हैं?
ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है, और सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है कि वो बस एक अच्छा पिता है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन इस धारणा को चुनौती देते हुए समझाते हैं कि ये कृत्य वास्तव में जॉब के गहरे डर को उजागर करता है।
कैसा डर?
जॉब मानकर चल रहा है कि ईश्वर बहुत तुच्छ या पेटी है। वो ईश्वर को अनुच्छेद और सनकी मानता है, जो शायद किसी छोटी सी तकनीकी गलती पर भी उसे कठोर सजा दे सकता है।
ओ, मतलब वो ईश्वर को कोई दयालु सत्ता नहीं मान रहा, बस डर रहा है।
बिल्कुल, और यहीं पर चैलेंजर का तर्क आता है।
चैलेंजर मतलब वो विरोधी।
हाँ, अगर जॉब डर के मारे अनुष्ठान करता है तो चैलेंजर का ये सोचना बिल्कुल तार्किक है, न कि द्वेषपूर्ण, कि जॉब अपनी धार्मिकता केवल ईश्वर की कृपा खरीदने के लिए निभा रहा है।
बाप रे, मतलब चैलेंजर कोई विलन नहीं है, वो बस एक लॉजिकल पॉइंट उठा रहा है। वो कह रहा है कि ये आदमी तुमसे प्यार नहीं करता, ये तो बस खौफ के मारे तुम्हारी चापलूसी कर रहा है।
एकदम सही, उसका पूरा रिश्ता डर और लेन देन पर टिका है।
लेकिन इन सब डरों और गलत धारणाओं के बावजूद जॉब एक चीज सही करता है ना, जब उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है तब भी वो अपनी अखंडता या इंटेग्रिटी नहीं छोड़ता।
हाँ बिल्कुल, जॉब अध्याय 27 के अनुसार वो अपनी अखंडता बनाए रखता है। जब उसकी पत्नी और दोस्त उसे गलत सलाह देते हैं तब भी वो उनकी बात नहीं मानता।
मतलब वो साबित कर देता है कि चैलेंजर गलत था, वो किसी स्वार्थ के लिए ईश्वर की सेवा नहीं करता। ये तो उसकी बहुत बड़ी जीत है।
जीत तो है, लेकिन फिर वो एक नई खाई में गिर जाता है, अहंकार की खाई में।
अहंकार? वो कैसे?
एलिहू नाम के किरदार की जांच से पता चलता है कि जॉब अत्यधिक आत्मधार्मिक हो गया है, मतलब सेल्फ राइचियस हो गया है।
आत्मधार्मिक? ये तो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो समाज सेवा तो बिना किसी स्वार्थ के करता है, लेकिन फिर खुद को इतना महान समझने लगता है कि वो पूरी व्यवस्था और दूसरों के न्याय का ही अपमान करने लगता है।
हाँ, एकदम सही एनालॉजी है।
मतलब अच्छाई और अहंकार के बीच की रेखा पार हो जाती है।
जॉब अपनी धार्मिकता का उपयोग खुद को ईश्वर से ऊपर रखने के लिए करता है।
ईश्वर से ऊपर? वो ऐसा कैसे कर सकता है?
जॉब अध्याय 40 में ईश्वर खुद बताते हैं कि जॉब ने अपनी धार्मिकता को ऊंचा उठाने के लिए ईश्वर के न्याय को ही नीचा दिखा दिया है। जॉब सोचता है कि अगर मैं बेगुनाह हूँ और मुझे सजा मिल रही है तो इसका मतलब है कि ईश्वर ही गलत है।
बाप रे, मतलब वो खुद को सही साबित करने के लिए ईश्वर को ही भ्रष्ट उतारा है। वो एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं, लेकिन वो इंसान के रूप में कई मायनों में विफल रहता है।
यही डॉक्टर वॉल्टन की रिसर्च का सबसे बड़ा निष्कर्ष है।
तो इस सब का आखिर क्या मतलब है?
अंतिम निष्कर्ष ये है कि जॉब की पुस्तक वास्तव में जॉब के बारे में है ही नहीं।
ये जॉब के बारे में नहीं है तो फिर किसके बारे में है?
ये ईश्वर के बारे में है, ईश्वर की बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांड कैसे काम करता है उसके बारे में है। जॉब की प्रतिक्रियाएं हमारे लिए अनुकरण करने योग्य मॉडल नहीं है।
गिजाना हमारे सुनने वालों के लिए बहुत मायने रखता है। ये हमें सिखाता है कि जब हमारी अपनी जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा हो तो हमें बेहतर प्रतिक्रिया कैसे देनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल,
मतलब हमें सिर्फ ये नहीं सीखना कि जॉब ने क्या किया, बल्कि पुस्तक के असली संदेश को समझना है कि दुख के समय में ईश्वर के बारे में सही तरीके से कैसे सोचा जाए।
एकदम सही, हमें उसे एक लेन देन वाली मशीन नहीं समझना चाहिए।
सोचने वाली बात यह है कि अगर जॉब जैसा असाधारण और इतना धार्मिक व्यक्ति भी दुख के समय में ब्रह्मांड के काम करने के तरीके और ईश्वर के स्वभाव को समझने में इतनी बड़ी भूल कर सकता है।
हाँ, तो हम इंसान क्या चीज है?
बिल्कुल।
हाँ।
तो आधुनिक दुनिया में न्याय और दुख से निपटने के हमारे अपने तरीके कितनी गलत धारणाओं पर टिके हो सकते हैं।
ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है।
शायद हमें भी अपनी अपनी उस आत्मधार्मिकता और ईश्वर के प्रति अपनी समझ की फिर से जांच करने की आवश्यकता है। कहीं हम भी उसी पुराने महान सहजीवन वाले डर में तो नहीं जी रहे?
हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।